नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। पश्चिमी एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, कुछ देशों ने जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। तालिबान बलों ने डूरंड लाइन सीमा पर हुई झड़पों में 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी। बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत की ओर अग्रसर। अमेरिका और वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारियों ने राजनयिक और कॉन्सुलर संबंध फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। और अब समाचार विस्तार से। इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज सातवां दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया और उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि कुछ देशों ने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है और उसे राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए अमरीका पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसराइल ने आज लेबनान में हिजबुल्ला के बेरूत स्थित मुख्यालय और सैन्य साजो सामान से लैस 10 ऊंची इमारतों पर हमला किया। इसराइल ने बताया कि हमलों में कार्यकारी परिषद के मुख्यालय और ड्रोन के गोदाम को निशाना बनाया गया। इनका इस्तेमाल ईरान समर्थित हिजबुल्ला इसराइल पर हमले करने के लिए करता है। इसराइल ने घोषणा की कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर जैद अली जुमा को मार गिराया है। जुमा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के तोपखाने प्रमुख के रूप में कार्यरत था। इसराइल की नौसेना ने त्रिपोली क्षेत्र में हमास कमांडर वसीम अतल्ला अली को भी मार गिराया। हमलों की शुरुआत से लेकर अब तक इसराइल ने बेरूत के दक्षिण में स्थित दहिये में कुल 26 बार हमले किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उपयोग करेगी। नई दिल्ली में उन्होंने अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष के कारण व्यापार में आई बाधाओं के बारे में बताया। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने इन मुद्दों पर दैनिक आधार पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी खरीदारों से किए गए सभी वादों को पूरा करना जारी रखेगा।
हर दिन अंतर मंत्रालय समूह निर्यातकों से बात करता है और सरकार निर्यातकों को हर तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन से निर्यातकों का समर्थन करेगी। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के मुद्दे पर जहाजरानी मंत्रालय और सभी जहाजरानी कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।
अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि डूरंड लाइन सीमा पर हुई झड़पों के दौरान तालिबान बलों ने 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्ला ख्वारज़मी ने कहा कि ये लड़ाई अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शोराबक जिले में शुरू हुई, जहां तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि झड़पों के दौरान तालिबान बलों ने चौकी पर कब्जा करने के बाद उसे विस्फोटकों से नष्ट कर दिया। ख्वारज़मी ने दावा किया कि लड़ाई के दौरान 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि तालिबान लड़ाकों ने पख्तिया के दंड पाटन क्षेत्र में 5 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया और टॉपसर खुज करम तथा अंजर की सार चौकियों में घुस गए। नेपाल में विधानसभा की 275 सीटों के एक ही चरण में हुए चुनाव के बाद मतगणना जारी है। और जानकारी हमारी काठमांडू संवाददाता से।
अब तक 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। नेपाल के 15 पर्वतीय जिलों में से 3 जिलों संखुआ सभा, डोल्पा और गोरखा में खराब मौसम के कारण शुक्रवार शाम को हेलीकॉप्टर से मतपत्रों के परिवहन में देरी हुई। शेष स्थानों पर मतगणना जारी है। प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 113 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार बालेंद्र शाह नेपाल के नए चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। अब तक बालेंद्र शाह को 13,654 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 3,011 वोट प्राप्त हुए हैं। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार टेक बहादुर गुरुंग और योगेश गौचन ठकाली ने 2,415 वोट प्राप्त कर प्रतिनिधि सभा चुनाव में जीत हासिल की। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के सह अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंडा रुकुम पूर्व से निर्वाचित हुए हैं। काठमांडू 6 से शिशिर खनाल और काठमांडू 1 से रंजू नेउपानी विजयी घोषित किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारियों ने राजनयिक और कौंसुलर संबंध फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई है। अमेरिका के विदेश विभाग के बयान के अनुसार इसका मकसद वेनेजुएला में नई सरकार के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण बदलाव को बढ़ावा देना है। ये कदम वेनेजुएला में स्थिरता, आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुलह को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद देश में कई बदलाव आए। इनमें अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का शपथ ग्रहण भी शामिल था। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों का मनोबल गिरने से कल प्रमुख अमरीकी सूचकांकों में गिरावट आई। मुद्रास्फीति और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंकाओं ने बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। डॉव जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.6% की गिरावट तथा S&P 500 में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने दोहा स्थित अल उदैद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। अल उदैद हवाई अड्डा पश्चिम एशिया में अमरीका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि खतरा टल गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। इस बीच कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से आग्रह किया है कि वे वर्तमान स्थिति को देखते हुए कतर के अधिकारियों, विशेष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दूतावास ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कतर के सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने और खिड़कियों तथा खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। कतर का हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है और उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित हैं। कतर एयरवेज कल सुबह अगली जानकारी देगा। सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। लक्ष्य ने प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के एनजी एंगस को 21-19, 21-23 और 21-10 से हराया था। प्रतियोगिता में अब सिर्फ लक्ष्य सेन की ही भारतीय चुनौती बची है। मिक्स डबल्स में कल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को हांगकांग के तांग चुंग मान और तेज सिंह स्वेट ने 21-19, 9-8 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की पर्थ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 198 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिगेज ने सबसे अधिक 52 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 35 रन की पारी खेली और काश्वी गौतम 34 रन बनाकर नाबाद रहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी एशिया में गहराते संकट के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कुछ देशों ने जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। तालिबान बलों ने डुरन लाइन सीमा पर हुई झड़पों में 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी। बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत की ओर अग्रसर। अमेरिका और वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारियों ने राजनयिक और कौंसुलर संबंध फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।